अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वान् देव वैनान् विद्वान् स्वस्मज्जुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम मुक्तिं विधेम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वान् देव वैनान् विद्वान् योऽस्मज्जुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम मुक्तिं विधेम इसमें अग्नि से प्रार्थना है कि अग्नि हे अग्निदेव नए सुपथा हमको सन्मार्ग पर ले चलो। यहाँ सन्मार्ग से तात्पर्य शरीर छोड़ने के बाद जो व्यक्ति ब्रह्मलोक की तरफ यात्रा कर रहा है तो अग्नि से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ब्रह्मलोक की ओर ले चलो। राय मन जो समर्थमान सबसे श्रेष्ठ लोक है उस लोक की ओर हमको ले चलो। आसमान में बजे विश्वान देव वैनान विद्वान ये है अग्नि के लिए कहा गया है कि जो है अग्नि आप जो है विश्वान में समस्त के मार्ग में जो रास्ते हैं विद्वान को जानने वाले हैं कि आप जो मार्ग ब्रह्मलोक के जो मार्ग है सारे विश्व के जितने मार्ग हम सबको जानते हैं ब्रह्मलोक का मार्ग भी आप हमको जानते हैं उसी मार्ग पर हमको आप ले चलो। युद्ध मैंने हमसे दूर करो अस्मान हमसे जो राणम ये हो जो कुछ हमने कुटिल कार्य किए हो अशुभ कार्य जो कुछ हमने किए हो उनसे हम दूर रखो। भूष्ठान से न मुक्ति हे अग्निदेव हम आपकी बहुत प्रार्थना करते भूष्ठान मैंने बहुत अधिक बार बार न मुक्तिम नमः करके नमः नमः बार बार प्रणाम करते हैं वंदना करते हैं आप हमारे ऊपर कृपा करें और हमको सन्मार्ग में ले सकें। यहाँ अग्नि की प्रार्थना से ही सूचित होता है कि अग्नि मार्ग है। दो मार्ग गीता में बताए गए एक धूम्र मार्ग और एक अर्घ्य मार्ग। अर्घ्य माने अग्नि मार्ग। जो धूम्र मार्ग है वो जैसा कि बताया कि व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग करके शुभाशुभ कर्मों को भोग करके लौट आता है वो धूम्र मार्ग है और अर्घ्य मार्ग में अग्नि का मार्ग है वो अर्घ्य मार्ग है। इसलिए फिर भगवान वहां पर कहते हैं कि जो अर्घ्य मार्ग से होकर के जाने वाले हैं वो अग्नि ही ज्योति ही आहा वो पहले अग्नि से होकर के ज्योति के मार्ग में जाते हैं और फिर आह मन दिन के मार्ग में फिर पहुंचे और फिर शुक्ला शर्माता उत्तरायणम फिर शुक्ल पर पहुंचते हैं और फिर उत्तरायण मार्ग से होते हुए ब्रह्मलोक को पहुंच जाते हैं। तब तक प्रयास आगच्छन्ति इस मार्ग से जाता हुआ गच्छन्ति कहाँ पहुंचता है ये ब्रह्म विदु जना जो ब्रह्म को जानने वाले हैं परमात्मा को जानने वाले हैं वो ब्रह्मलोक को जाते हैं वहां पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से ये मार्ग प्रारंभ होता है मार्ग प्रारंभ होता है। तो अग्नि ज्योति आपा इस प्रकार से आहा इस प्रकार से जो कहा गीता में तो वही इसमें देखते हैं उपनिषद में अग्नि नए सुपता राय उससे प्रार्थना है कि हे अग्निदेव हमको अपने अपने अग्नि मार्ग से हमको ले चलो। इसके पहले भगवान बताते हैं धूम्र मार्ग। अब देखो जैसे अग्नि जलाई जाए तो आग में दो बात है एक तो धुआं है और एक जल्दी हुई आग है। धुएं में क्या दिखता है और अग्नि में क्या विशेषता है दोनों को गुण देखो तो धुआं अंधकार करने वाला है और आंखों में कड़ुआ लगने वाला भी है। अग्नि जो है वो प्रकाशमान है तेजोमय है ताप देने वाली भी है दोनों में किस प्रकार के अंतर है। इसी प्रकार से अध्यात्म के क्षेत्र में जो पुनरावर्ती मार्ग है वो धूम्र अब रात को हो गई पूरी 12 घंटे की रात हो गई उतनी देर तक अंधेरे ही अंधेरा अंधेरे ही अंधेरा। अब रात्रि के बाद जब और आगे बढ़ेंगे तब जब वो हो कृष्ण पक्ष आ गया। अब कृष्ण पक्ष में रात्रि में अधिक अंधेरा तो वो दिन में भी रात्रि में इस प्रकार से रात्रि वाले मार्ग में अंधेरा बढ़ता चले 15 दिन के हो गए कृष्ण पक्ष और फिर जो है साय मार्ग 6 महीने का हो गया तो 6 महीने का अंधकार हो गया। इस प्रकार से अंधकार जो बढ़ता गया और अंधकार का ही मार्ग और जितने भी नाम लिए गए वो अंधकार के बने अज्ञान का मार्ग, अज्ञान बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, अज्ञान में बढ़ता जा रहा है अंधकार में बढ़ता जा रहा है, एक मार्ग तो इस प्रकार। और दूसरा मार्ग जो अग्नि का मार्ग, तो अग्नि जैसे अग्नि के मार्ग माने अग्नि में ज्योति में प्रकाश है, और ज्योति के प्रकाश से फिर दिन में आ गए तो दिन का पूरा प्रकाश, और फिर दिन के बाद में कहीं फिर शुक्ल पक्ष में आ गए तो शुक्ल पक्ष में दिन का भी प्रकाश और रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश, तो प्रकाश और अधिक बढ़ गया। उत्तरायण में पहुंच गए तो फिर उत्तरायण में सूर्य का प्रकाश और भी ज्यादा, रात्रि भी छोटी हो गई और दिन बड़ा हो गया तो और अधिक प्रकाश हो गया। तो मैंने जितने भी शब्दों का ये प्रयोग किया ये ज्ञान के सूचक है, अग्नि भी ज्ञान के सूचक, दिन भी ज्ञान सूचक, शुक्ल पक्ष भी ज्ञान का सूचक, और उत्तरायण का जो वो भी ज्ञान का सूचक। मैंने इस प्रकार की ज्ञान समारे प्रकाश होता जाता है, व्यक्ति में आत्म चेतना प्रकाशित होती जाती है और उसका अंधकार मिटता जाता है, अज्ञान समाप्त होता जाता है। प्रकाश बढ़ते 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 आज बढ़ते बढ़ते अस्तित्व प्रमेय लोक में पहुंच गया। तो अब ये नहीं समझना चाहिए ऐसे करके जो वर्णन किया जा रहा है ये कोई पृथ्वी के ऊपर कोई रास्ता है, ये पृथ्वी से ऊपर उठ करके आसमान में होकर के कहीं प्रमेय लोक में जाते हैं, ये ऐसी जो कल्पना अपने मन से कर लेते हैं ये हमारी इच्छुक बुद्धि का कारण इस प्रकार से होता है। हम जब किसी मार्ग का स्मरण है तब यही जमीन पर इकट्ठा चले जा रहे हैं और हम उसके ऊपर आगे बढ़ चले जा रहे हैं, मार्ग के मैंने यही समझ। लेकिन एक मार्ग ये भी देखो, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति नया नया कहीं सरकारी कर्मचारी हुआ, अपॉइंटमेंट उसका मिला तो छोटी पोस्ट के ऊपर हो गया, उसके बाद उसमें दो तीन साल चार साल का व्यक्त प्रमोशन हो गया, एक और बड़ी पुरस्कार हो गया, फिर दो चार साल काम किया फिर एक और प्रमोशन हो गया, फिर दो चार साल काम किया फिर और प्रमोशन हो गया। तो वो भी तो धीरे अपने जो सबसे ऊंचा अफसर का पद है उस पद की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो कैसे चला जा रहा है, कितना चला जा रहा है, उसको चला जाना था तो कैसे प्रयोग करते, उसका भाव क्या है, जो भाव है उसी से जुड़ता भाव ये कि व्यक्ति के अंदर जब जब थोड़ी आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है तो वो धीरे धीरे करके बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती चली जाती है और बढ़ते बढ़ते अंततः उस चेतना में इसी प्रकार परमात्मा हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति अंधकार की ओर आगे बढ़ता है अज्ञान की तरफ आगे बढ़ा तो अज्ञान बढ़ते 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 भौतिक अज्ञान इतना अधिक उसके भौतिक चाल उसके साथ में हो जाता है, इतना ज्यादा उसे गिर जा रहा है कि वो चेतना भीन हो जाता है, परमात्मा चेतना आत्म चेतना जैसे उसे कुछ रह नहीं जाता, वो जड़ की तरफ बढ़ता चला जाता है, अंधकार की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो अंधकार की तरफ बढ़ता चला जाता है इसका तात्पर्य क्या हुआ, अज्ञान की तरफ बढ़ता चला जाता है कि मैंने क्या हुआ, ये कोई रास्ता कोई सड़क जैसा रास्ता थोड़े। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति प्रमेय लोक जाता है तो अपने मन से ये कल्पना ना करें कि जाता है कर्म ऐसे चलते चलते बढ़ता चला जाता है, बस उसका आध्यात्मिक अनफोल्डमेंट होता जाता है, उसके भीतर से वो प्रकाशित होता चला जाता है, उसके दुख दूर होते जाते हैं, भय चिंताएं दूर होती जाती हैं, अशांतियां दूर होती जाती हैं, धीरे धीरे वो शांत प्राप्त करता जाता है, प्रसन्न होता जाता है, आनंदित हो जाता है, निर्भय होता जाता है, ज्ञान उसका बढ़ता जाता है, आत्मबल बढ़ता जाता है और फिर वो परमानंद की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ये गतियां इस प्रकार जहाँ अब बोलने के लिए तो शास्त्रों में इसी प्रकार से जैसे कि प्रयोग होते हैं भाषा के उसी प्रकार बोल दिया और अग्नि से प्रार्थना भी कर दी कि हे अग्निदेव आप विश्व के जितने भी मार्ग हैं उन सबके आप जानने वाले हैं, इस अध्यात्म मार्ग में हमको आगे बढ़ाते हुए हमें आप दें और जो हमारे भी पाप आदि हैं दोष आदि हैं उनसे हम हमारी निवृत्ति करो, तो ऐसे करके उससे प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना भी एक प्रार्थना उपासना का एक अंग है, लेकिन इन दोनों श्लोकों में किस प्रकार से व्यक्ति जो वो उपासक क्रम क्रम से मार्ग से बढ़ता हुआ आध्यात्मिक मार्ग से बढ़ता हुआ समस्त लोकों से ऊपर उठता हुआ ब्रह्मलोक और परमात्मा लोक तक पहुंचता है उसको समझने के ध्यान दें, धीरे धीरे इनका अध्ययन करते रहेंगे विचार करेंगे तो भाव हृदय में स्पष्ट हो जाएगा, समझ में आने लगेगा कि इनका शास्त्रों का विषयों का क्या तात्पर्य वो क्या कहना चाहते हैं, भाव उसका क्या है उसको समझ। एक भौतिक जीवन है और एक आध्यात्मिक जीवन, ही पहले ही कहा था वही आकर के फिर विश्राम अंत में फिर स्मरण कर, भौतिक जीवन जो है वो जहाँ पंचमहाभूत या मायाकृत या भूतों से बना हुआ जितनी भी सृष्टि है उस सृष्टि में ही आसक्त रहना, उसी में लिप्त होकर के रहना भौतिक जीवन। और माया हो चाहे प्रकृति हो चाहे भौतिक जीवन हो, इन सब में अंधकार अज्ञान। इससे अलग हटकर के जो दूसरा आध्यात्मिक जीवन है, वो आध्यात्मिक जीवन माया से अलग हटकर के जो माया का स्वामी है, ईश्वर है, परमात्मा है, वो अलौकिक तत्व है। वहां भौतिकता नहीं, वहां लोक नहीं, वो परमात्मा जो है वो शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा, आनंद में परमात्मा, एक दूसरा पशु। एक दिशा जो है वो भौतिक दिशा है, संसार की तरफ आगे ले जाने वाली है, दूसरी दिशा जो है परमात्मा की ओर ले जाने वाली है। ये दो प्रकार की दो दिशाएं। व्यक्ति अत्यधिक भौतिकता में लिप्त न, जब तक शरीर है तब तक भौतिक जीवन तो जीना ही पड़ता है, लेकिन उस भौतिक जीवन को जीवन का लक्ष्य न बना ले और उसमें आसक्त न हो, लक्ष्य बनावे आध्यात्मिक जीवन को और उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास। जो शरीर है और शरीर के साथ जो साधन हमारे प्राप्त हुए हैं भौतिक साधन, वो इसलिए हैं जिससे कि हम भौतिकता से निवृत्त होकर के, अज्ञान से निवृत्त होकर के परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा का चिंतन करें, आत्मा का चिंतन करें और परमात्मा की दिशा में हम आगे बढ़ते हुए परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त करें। फिर देखें, लोक शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो जितनी भी स्थूल और सूक्ष्म जितनी भी सृष्टियां हैं, उन सृष्टियों में जो नाना प्रकार के अनुभव हैं, उन्हीं को लोक कहते हैं। लोक कोई स्थान विशेष नहीं। लोक को समझने के लिए फिर स्वप्न का सहारा ले लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे जागृता अवस्था में मृत्यु लोक में सो गए तो हम स्वप्न लोक में पहुंच गए। अब देखो बोलेंगे तो हम स्वप्न लोक में पहुंच गए, लेकिन पहुंचने के माने स्वप्न लोक में पहुंचने के माने ये नहीं है कि हम जमीन पर चलते चलते या आसमान में उड़ते उड़ते सब करीब हम स्वप्न में पहुंच गए, ऐसा तो नहीं होता। हम जो स्वप्न में पहुंचते हैं, हर व्यक्ति को अपना अनुभव, स्वप्न में कैसे पहुंचते हैं, शरीर का आम भाग छूट जाता है, शरीर इसी मृत्यु लोक में शरीर यहाँ बना रहता है और फिर अपने जीव भाव से हम अपने स्वप्न लोक को पहुंच गए। तो हमारे इस पृथ्वी से या हमारे नगर से हमारा स्वप्न कितनी दूर है और किस दिशा में, स्वप्न हमारा उत्तर की तरफ है कि दक्षिण की तरफ है, है कि ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, इस पृथ्वी से उसका कोई मतलब नहीं। इससे कोई संबंध लेकर के हम उत्तर दक्षिण पूरा पर नहीं होता, स्वप्न लोग इधर क्रम चले गए या हम स्वप्न में फिर इधर चले गए, ऐसा नहीं होता। स्वप्न में हम पहुंचे कि माने हम अपने शरीर भाव से ऊपर उठ करके अपने जीव भाव में आ गए और सूक्ष्म ये लोग जो स्वप्न लोग एक सूक्ष्म लोग है। अगर स्वप्न लोग न होता तो शायद स्वर्ग और नरक इत्यादि लोगों का हम वर्णन ही नहीं कर पाते कि कहां स्वर्ग है और कहां कैसा नरक है। स्वप्न को हम जानते हैं तो उसके सहारे हम ये भी समझ सकते हैं कि कैसे शरीर का अनुमान न रह जाने पर हम स्वप्न लोक में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से शरीर न रह जाए तब हो गया, तो परिमाणों पर मिल गया। अब जीव कहाँ है, अब जीव जो है वो एक भिन्न लोक में है, चाहे नरक लोक में हो, चाहे स्वर्ग लोक में हो, चाहे गंधर्व लोक में हो, जहां जिस प्रकार की वो अनुभूति कर रहा होगा वहां उसी लोक में। कभी कभी लोग इस बात के ऊपर अधिक विचार नहीं करते और उसमें ये कहते हैं कि हमने तो स्वर्ग का वर्णन पढ़ा है, जो अपने पुराणों में वो स्वर्ग का भी वर्णन पढ़ा है और फिर बाइबल इत्यादि क्रिश्चियन के पढ़े तो उसमें स्वर्ग का वर्णन आता, वो भी हमने पढ़ा है और मुसलमानी ग्रंथ जो है वो पुराण आदि है उनके ग्रंथ है उनको भी पढ़ा है और उसमें भी स्वर्ग का वर्णन है, लेकिन सबके स्वर्ग के वर्णन अलग अलग है। अंग्रेजों का स्वर्ग दूसरे तरह का है और मुसलमानों का स्वर्ग दूसरे तरह का है, हिंदुओं का स्वर्ग दूसरे तरह का है। इसके माने ये सबकी कल्पनाएं हैं, स्वर्ग की कल्पना सबने की, सबने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी कल्पना कर, जैसे परिवार में जैसे परिवेश में रहते थे वैसे स्वर्ग की कल्पना कर। हिंदू लोग स्वर्ग की कल्पना करेंगे तो उनको जैसे हिंदू समाज है, हिंदू वातावरण व्यवहार है, उसी के अनुकूल उन्होंने स्वर्ग की कल्पना करी। हिंदू जो शरीर छोड़ करके जाएगा स्वर्ग भी जाएगा तो कुर्सी कुर्ता पहन करके जाएगा। अंग्रेज जब स्वर्ग को जाएगा ना तो वो पेंट कोट पहन करके अपने स्वर्ग जाएगा। मुसलमान जब अपने स्वर्ग जाएगा तो अपने सहमत अहमद लगाए हुए उस प्रकार का वो स्वर्ग जाएगा। इसके मारे सबकी अपनी अपनी कल्पना है। ये प्रश्न शंकराचार्य प्रधान को विशद भाष लिखते हुए तब उसके ऊपर उठाया, कहा कि तो स्वप्न तो हमारी अपनी कल्पना है और अगर इसी प्रकार का स्वर्ग है और इसी प्रकार का नरक है तो इसके माने ये है कि वो भी हमारी कल्पना है। शंकराचार्य जी उसका उत्तर बड़ा सुंदर देते हैं। वो कहते हैं कि देखो आप क्या समझते हो कि केवल स्वप्न ही कल्पना है, अरे स्वर्ग भी कल्पना है और नरक भी कल्पना है और जिस लोक में जिस समय रह करके आप प्रश्न कर रहे हो ये भी सब कल्पना है। कल्पना रहित तो केवल एक आत्मा और परमात्मा है, उसके अतिरिक्त सब कल्पना है, चाहे व्यक्ति की कल्पना हो चाहे ईश्वर की कल्पना हो, ये लोग भी सब ईश्वर की कल्पना है और हर व्यक्ति अपनी कल्पना बना करके इस जगत में रहना अपना अपना संसार बनाए हुए अपनी अपनी कल्पना में जीवन जी रहा है। सपने में भी जब व्यक्ति जाता है तो अपनी कल्पना में जीवन जीता है और शरीर छोड़कर के जब स्वर्ग जाता है तो भी अपनी कल्पना में जीवन जीता है और नर्क जाता है तो भी अपनी कल्पना के अनुसार जीवन जीता है। लेकिन कल्पना ये ऐसी विचित्र माई कल्पना है कि कल्पना झूठे होते हुए भी जगत असत्य देव दुख आई, ये तुलसीदास जी का वचन है, सब झूठा लेकिन दुख देने के लिए सबक। जैसे स्वप्न मिथ्या है तो भी दुख देने में समर्थ, इसी प्रकार से स्वर्ग भी मिथ्या है, केवल जीव के अपने ही पुण्यों का ही कल्पना है। नरक जो वो भी जीव के अपने पापों के कारण ही नरक की कल्पना है, लेकिन नरक में जाएगा तो उसे नरक का दुख तो भूलना पड़ेगा, कुछ लगेगा उसे ऐसा ही दुख न लगेगा। जागृता अवस्था में भी जिस संसार में हम बात करते हैं, जगत की बात नहीं कहते, हर व्यक्ति का अपना अपना संसार है और अपने अपने संसार में हर व्यक्ति सुखी होता रहता है। किसी व्यक्ति का कोई अपना परिवार का बड़ा प्रिय व्यक्ति जो उसका शरीर अंत हो गया, अब दुखी है, दुखी क्यों? उसने जिसके साथ से अपना संबंध जोड़ रखा था मान से कल्पना कर रखी थी मेरा और वही अंत हो गया, ये सब उसका काल्पनिक संसार और उस काल्पनिक संसार में अपना दुख भोग रहा है, दुख सबसे भोग रहा है, दुख का अनुभव यथार्थ है, ये नहीं कह सकता मैं दुखी नहीं हूं। और जिस दुख से जो व्यक्ति का निस्ताप होना है छुटकारा माना है वो एकमात्र सत्स्वरूप परमात्मा है, उसी का चिंतन करने वाली को छूटता है, वो समस्त लोगों से बाहर निकल जाता है। जब तक ये व्यक्ति संसार का चिंता अज्ञान में रहेगा तब तक वो किसी न किसी लोग में वास करेगा, कोई लोग हो चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक हो चाहे मध्य लोग हो चाहे स्वप्न लोग हो, ये सब व्यक्ति जो अपने लोगों में वास कर रहा है वो कर्मानुसार अपने स्वभाव के कर्मों का फल हो रहा है। लेकिन जब व्यक्ति को हो आध्यात्मिक साधना करते करते उपासना करते ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त कर लेता तो परमात्मा लोकातीत है, परमात्मा लोक में सर्वत्र व्याप्त है लेकिन स्वयं लोकातीत है। जैसे आकाश पर जगह व्याप्त है लेकिन आकाश के पसंद है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, इसी प्रकार परमात्मा वो छोटे चैतन्य है जिसके ऊपर मन बुद्धि पापाचिता अपाप विद्यम वो पाप से युद्ध नहीं होता, वो परमात्मा जो वो समस्त संसार में व्याप्त होते हुए भी मन विस्तार से उससे प्रभावित नहीं होता, वो परमात्मा लोकाती है, परमात्मा को प्राप्त करके लोक के जितने भी सुख दुख आदि है उनसे वो छुटकारा और वो जीवन का यथार्थ रूप वास्तविक रूप और उत्तम रूप और आनंद रूप उसके लिए जीवन में प्रयास करना चाहिए। किसी के लिए एक उपासना के जितने रास्ते इतने सब बताएंगे फिर भी इस प्रकार से उपासना है। समस्त लोगों के बाद में एक अंतिम लोक है जिसे ब्रह्म लोक है, की बात अभी इसने बताया जो उपासक जो है अंत में ब्रह्म लोक आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तन हो, जब तक ब्रह्म लोक तक के और जितने भी लोक हैं वे सब पुनरावर्तन ये व्यक्ति को फिर लौट लौट करके आना पड़ता है, जेल में आएगा, नाना प्रकार के संस्कार बनते रहेंगे, आत्माएं बनती रहेंगी, सुख दुख भोगता रहेगा। और माँ होती है तो कौन होती है, पुनर्जन्म कहते हैं। माँ होती है क्या भगवान कहते हैं, वो व्यक्ति उनको प्राप्त करके पुनर्जन्म न दे, उसको फिर पुनर्जन्म उसको नहीं होता। इसलिए जो है अब ब्रह्म लोग जो है वो एक बार्डर लाइन, ब्रह्म लोग के बाद में चलाकर परमात्मा को प्राप्त करें उपासना, और ब्रह्म लोग के बाद पहुंच करके यदि किसी जीव को ये लगा कि अरे अब तो हम ब्रह्म लोग में आ गए, इतना सारा सुख है, लेकिन लौट करके जरा स्वर्ग भी देखना चाहिए, जरा मृत भी देखना चाहिए, तो वहां से अगर उसके मन में फिर कामनाएं आ गई, फिर किसी की तरफ चला गया, फिर संसार की तरफ उसका ध्यान चला गया, तो वहां से ब्रह्म लोग से भी लौट करके फिर आ सकता है जिन लोगों लोग जितने भी हैं वो सब वृंदावन होता रहता है, ये सुगम करता रहता है, करता रहता है अपने अपने स्वास्थ्य का। पर जहाँ लोग से अतीत ब्रह्म लोग के बाद फिर कुछ लोग, अब जो बाकी लोग कभी कभी बोले जाते हैं पुराणों में आते हैं कि जैसे जो है वैकुंठ धाम, तो वो भी भगवान का रूप है, वैकुंठ धाम इस प्रकार से धाम भगवान के नाम कैलाश धाम की नाम हो गया। ये सब धाम ये केवल है सांकेतिक, ये धाम करके कोई धाम नहीं है, मतलब परमात्मा को प्राप्त होकर के परमात्मा मय हो जाते हैं, लेकिन व्यक्तियों को धाम भवन लोग ऐसे ही करके पहचान में आता है, इसलिए भगवान का भी करके, इसलिए भगवान कहते हैं माँ होते थे तो कौन सी है पुनर्जन्म विद्या से हमारे भगवान को प्राप्त, जो भगवान को प्राप्त करता है भगवान ही को प्राप्त होता है। इसलिए पुराणों में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि परमात्मा परमात्मा चाहे निर्गुण हो तो परमात्मा वही है, सगुण हो तो भी वही परमात्मा है, लोकातीत सुगुणातीत सगुण परमात्मा भी है, और परमात्मा ही परमात्मा का नाम भी परमात्मा में है, और परमात्मा की लीलाएं भी परमात्मा मय है, और परमात्मा का धाम भी परमात्मा मय। ये सब कहने के लिए वर्णन करने के लिए परमात्मा का, परमात्मा का आकार रूप, परमात्मा का नाम, परमात्मा की लीलाएं, परमात्मा का स्वरूप, ये सब अलग अलग करके नाम बोले जाते हैं, लेकिन सब अलग अलग कुछ नहीं, ये सब परमात्मा में ही। जैसे शक्कर के खिलौने बनाए जाए तो चाहे कोई भी खिलौना बनाया जाए, चाहे हाथी बनावे, चाहे घोड़ा बनावे, चाहे ताजमहल बना दो, चाहे मंदिर बना दो, चाहे उसमें आदमी पुलिस पदार्थ बना दो, चाहे चोर बना दो, चाहे डाकू बना दो, चाहे संत बना दो, उसके जितने भी खिलौने बनेंगे उसमें सबमें बात एक ही वो चीनी है, और इसी प्रकार से वो परमात्मा ही एकमात्र परमात्मा है, परमात्मा का नाम भी परमात्मा, परमात्मा की लीलाएं भी परमात्मा, परमात्मा का धाम भी परमात्मा, परमात्मा का स्वरूप भी परमात्मा। इसलिए परमात्मा को प्राप्त हो गया तो प्राप्त होने के माने क्या, वो अपने सब जितनी उपाधियां उसको छोड़ दी तो वो परमात्मा में ही है, अपने इस प्रकार से परमात्मा भाव को प्राप्त करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो उसे रोकना नहीं पड़ता। पर इस स्थिति का वर्णन करते हुए इसी ओर की तरफ ये अंतिम जो ये है अग्नि से जो प्रार्थना है, इसी बात के कहते हैं कि पुष्ठां देहं बुद्धिं विदेम, हम बार बार आपसे प्रार्थना करते हैं हे अग्नि देव कि मुझे अग्नि मार्ग के लिए जागृत के चलते चलते हम लोग उस प्रकार से ब्रह्म लोक तक पहुंचा दें, जहाँ ब्रह्म लोक से ब्रह्मा जी की कृपा से हैं परम परमात्मा को जो हमारे उपास्य हैं उनको हम प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार ये है चार चीजों को हमें उपासना थी, उपासना के विभिन्न पक्ष थे, उपासना का फल किस प्रकार से ज्ञान घट करके वो भी ये है। सभी उपनिषदों में कुछ न कुछ उपासना का वर्णन है, कुछ न कुछ ज्ञान का वर्णन है, क्योंकि उपनों का प्रतिपाद विषय है ये वैराग्य। जो व्यर्थ व्यक्ति है वह अधिकारी है, वैराग्य की महिमा बार बार उसमें बोली गई है, और स्वर्ग और तीर्थ और भौतिक सुखों की निंदा की गई, जितने भी उपनिषद होंगे उनमें स्वर्ग की निंदा की, और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले जो यज्ञ हैं उनके यज्ञों की भी निंदा की, इन उपनिषदों में गई वो यज्ञों की भी निंदा, उसमें स्वर्ग की भी निंदा, इनकी सबकी कामना का त्याग करने के लिए वैराग्य की सुधा है। व्यक्ति को विरक्त होना और विरक्त होकर के व्यक्ति को ज्ञान विज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्त करे अथवा वासना और हंसी के द्वारा परमात्मा की प्राप्त करे। ये उपासना यही अपने समस्त उपनिषदों का प्रतिपादन है। एक ही छोटा सा प्रारंभिक उपनिषद 18 श्लोक है। कई बार इसकी पुनरावृत्ति लेगी इसका पाठ करना आसान हो जाए। जो लोग इस बीच में बोलते रहे होंगे हमने बोला उसके बाद जो पुनरावर्तन करते रहे होंगे बोलते रहे होंगे उन लोगों को इसको बोलने का अभ्यास हो गया। उनको ये चाहिए कि इस उपनिषद का बार बार पाठ करते हैं। 18 श्लोक है। कई लोगों को हमने देखा बहुत जल्दी याद होंगे। हमें रोटी में हमने इसको दिया वहां पर इसका उपनिषद का तो दो तीन लोगों ने बताया कि आपको तो याद हो तो इसको श्लोक 18 श्लोक याद करने में क्या याद हो जाए। न भी याद हो जाए तो पुस्तक रखे। जिनके पास पुस्तक है तो पुस्तक उठा करके डाल लेंगे किनारे क्योंकि ये ज्ञान का नहीं है कि चार दिन में सब के बाद उनका सो भी पार कर पहुंच गए ब्रह्म लोक को रचने में। ये इसको लेकर के बार बार इसको पढ़े इसकी व्याख्या को भी बार बार पढ़े थोड़ा थोड़ा पढ़े रोज थोड़ा सा स्मरण करते। और जो तरीका इसमें बताया गया है वो उपासना का तरीका है या ज्ञान का तरीका है वैराग्य का तरीका है विद्या विद्या के संबंध में जो बताया गया है इनको बार बार जैसे जैसे विचार करते रहेंगे वैसे वैसे हमारी धारणाएं बदलेंगी हमारे विचार बदलेंगे और हम सही रास्ते पर आते जाएंगे। और ये रास्ते चलिए जैसे 24 घंटे में अनेक प्रकार के कार्य हैं व्यापार धंधे के हैं खाना पीना भी होता है सोना फिरना घूमना फिरना व्यायाम आदि नाना प्रकार के कार्य हैं। उनमें से एक कार्य ये भी थोड़ा सा कार्य इसमें चाहे घंटे आधे घंटे का हो और ऐसा भी नहीं कि इसके अध्यापन के लिए अलग से कुछ समय चाहिए विशेष रूप से। थोड़ा बहुत अध्ययन करने के बाद में उपासना इत्यादि रहती है कि व्यक्ति अपने संसार के कार्य भी करता जाता है और उपासना भी कर सकता है। जैसा भी हमने बताया ना भगवान ने अर्जुन से कहा बस नाम अनुसार युद्ध से इसके माने क्या होगा दोनों काम होते हैं। जैसे कोई साइकिल चलाता है तो साइकिल भी चलाता है और दूसरा साइकिल चला जा रहा उसके पास भी कर लेता है। अब ये थोड़ी कहेगा तुझे धर्म साइकिल चलाने बोलो पर उसे से बात कैसे कर लेता है। इसी प्रकार से कार्य करता जाता है व्यक्ति तो दूसरा भगवान का स्मरण भी हो सकता है। अब ये थोड़ी कहेंगे कि अभी समय काम कर रहे भगवान का स्मरण कैसे करें अभ्यास हो जाएगा तो भगवान का स्मरण होता है। इसलिए उसके लिए कोई शिकायत करे कि इतना समय साफ कहाँ है क्या वो पाठ नहीं करते रहे हम भगवान का भजन नहीं करते रहे हम इसी ज्ञान के चक्कर में पड़े रहे। तो ये तो उनको न करने के लिए उनके बहाने मन के भीतर बैठा हुआ रजोगुण उनको इसके मन में इस प्रकार से उनको बहाने करता रहता है। साथ ही कहते हैं किसी व्यक्ति के लिए ये कुछ कठिन नहीं हर कोई व्यक्ति साधना को कर सकता है और करना भी चाहिए। कभी कभी लोग हैं वो भी एक दिन बात हो गई तो बिल्कुल जो प्रारंभ का होना होने लगते हैं क्या अरे क्या बताना हमारा प्रारंभ से कैसा है। अरे प्रारंभ होना तो कुछ नहीं प्रारंभ बहुत अच्छा है अगर कम से कम जो है मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया इसकी बुद्धि प्राप्त हो गई अब पुरुषार्थ स्थिति में है कि इसका दुरुपयोग मत करो। हाँ बुद्धि तो प्राप्त हुई मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ अब दुरुपयोग ये कि नाशवान भौतिक भोगों के पदार्थों को मिले करके सारा समय उसी में खपाते रहो सारा जीवन उसी में खपाते रहो ये हम अपने जीवन का और अपनी शक्ति का अपव्य है दुरुपयोग। पर पुरुषार्थ के माने थोड़ा छोटा से अपने को नियंत्रण रखो और उस बल का प्रयोग करो आध्यात्मिक साधना में लगाओ तो हर कोई व्यक्ति इतनी सावधानी बरते तो आध्यात्मिक चेतना आ सकती है और जीवन आनंद में बन सकता है। ये हमारे शास्त्रों को भी ये शास्त्र किसी को थमाने के लिए भ्रांति उत्पन्न करने के लिए नहीं बल्कि सत्य का प्रतिपादन करने के लिए जो भ्रांति में पड़े हैं उनको भ्रांति से निकाल करके सत्य में लाने के लिए प्रयास करते हैं। कोई समझे कि ये शास्त्र हमको भ्रमाते हैं या हमको गलत रास्ता दिखाते हैं या हमारी इससे कोई हानि होने वाली है तो इस सब उनका प्रारब्ध ही है जो इस प्रकार को बुला रहा है उसके कारण इस प्रकार की बुद्धि उनकी विकृत बुद्धि हो गई है। अन्यथा शास्त्र हमारे सब प्रकार के कल्याणकारी है। इन शास्त्रों की शिक्षा शास्त्रों का व्यक्ति को अध्ययन भी करना चाहिए और शास्त्रों की शिक्षा भी लेनी चाहिए। ये जो समझे कि शास्त्र हम जब बहुत विद्वान हो जाएंगे तब इन शास्त्रों का हम उपयोग कर पाएंगे अभी कैसे करें। हर व्यक्ति को शास्त्रों का अभ्यास भी करना चाहिए रास्ते बताया हुआ है और अपने आसपास जहां कहीं भी जो लोग हैं उनके मन में इनके भाव को भरते रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी साधना है। निरंतर व्यक्ति जो वो अपने परिवार के लोगों को है बच्चों में है स्त्रियों पत्नी में है
भाई बंधुओं में है, अपने मित्रों में है, जिस समाज में उठते बैठते हैं उन सब समाज में किसी का पालन करते हैं। हालांकि सामाजिक स्थितियां इसमें विपरीत प्रकार की कुछ है, उसमें मेरी आध्यात्मिक बात अगर ज्यादा बोलने लगेंगे तो व्यक्ति कभी कभी ये सोचते देखते करते फिर क्या कहती है कितनी बातें करते और लोगों को बना ले हो सकता है प्रचार कर, लेकिन अपनी तरफ से संयम बरत करके कि उनके संसारी रूप पदार्थों के जो दुर्गता उनकी है उसमें सम्मिलित न हो, जहाँ कहीं अवसर मिले तहाँ ये आध्यात्मिक चर्चा ही करे और यही मार्ग दिखा अपने धैर्य पूर्वक उससे कहे कि हाँ सबसे अच्छा जहाँ लगे हो ठीक है, लेकिन यही न थोड़ा धार्मिक आध्यात्मिक उधर भी ध्यान दो, कल्याण उसी से होना है ये बात समझा दो। जैसे इसके अपने अंदर आत्मबल आता जाएगा, दृढ़ता आती जाएगी, वैसे वैसे वाणी में बल आएगा और दूसरे लोग भी सुने, जब तक अपनी वाणी में बल नहीं तब तक बलि न सुने, लेकिन जैसे जैसे बल आता जाएगा सुनेंगे, विवश होकर के सुनेंगे, सुनना पड़ेगा और समाज में इसका प्रसार प्रसार करना चाहिए और साहस पूर्वक करना चाहिए। इस बात नहीं करना चाहिए कि जो दूसरे लोग के अंदर उठ जाएंगे विरोध का है, जो सत्य जो बात सत्य है और जो ज्ञान सत्य है के बनने बोलने में कहने में क्या है, क्या संकोच क्या डर, जब झूठी प्रपंच की बात में लोग बात करने में संकोच नहीं करते तो हम अपनी सत्य बात बोलने में क्यों संकोच करें। एक प्रकार से जो ये हाथ सत्य बात है वो समाज में फैलनी चाहिए, विस्तार पानी चाहिए, यही हम लोगों का प्रयास लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान को प्राप्त करें, ऐसे बढ़ते इसीलिए जो वो यहाँ पर जो है वो कार्यक्रम और भी करे स्वाध्याय मंडन किया चल रहा है, पहले बीच में भी कहा था श्री आदि बातें हैं कि स्वाध्याय मंडन में लोग सम्मिलित नया स्वाध्याय मंडल भी बना सकते हैं, उधर शास्त्री जगह में भी नया स्वाध्याय मंडल करा हुआ, जो लोग आते हैं वहां से तो वहां पर जो उधर पास पड़ता हो तो उसको उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जो नए लोग अभी तक स्वाध्याय मंडल में आए हो उसमें जो वो लोग नया स्वाध्याय मंडल को बना देना चाहिए, कहीं एक स्थान पर दूसरी जगह बैठे यही नहीं आगे पीछे वो अपना बना, जिसमें उसमें प्रारंभिक बातें पढ़ेंगे और जिनका विशाल भर से स्वाध्याय मंडल चला रहा है खास से चला रहा है वे लोग अब आगे के ग्रंथ पढ़ते जाते हैं, क्योंकि स्वाध्याय मंडल में ग्रंथों के अध्ययन करने की व्यवस्था है और उनका एक पाठ्यक्रम उसी प्रकार से जैसे स्कूल का इनका पाठ्यक्रम होता है उसी प्रकार से, इसलिए जो उसमें सम्मिलित होकर के स्वयं अध्ययन करें और दूसरे लोगों को उसी ज्ञान को सीख करके समझाएं। जब तक कि व्यक्ति पहले कन्विक्शन जब तक का नहीं बनता, धारणा पक्की नहीं बनती, तब तक व्यवहार भी बदलता नहीं, कोई व्यक्ति संजय धारणा को भी बनने व्यवहार बदल जाए तो व्यवहार नहीं बदलता, इसलिए समाज में लोगों की धारणा बदलने के प्रयास करें, उनका व्यवहार अपने आप बदल जाए तो स्वयं अपने आप उनके आचरण में परिवर्तन दिखाई देगा, धारणा उनकी बदले, धारणा के लिए उनको उसकी आध्यात्मिक ज्ञान उन लोगों में प्रचार प्रसार करना चाहिए। अभी थोड़ी सूचना अभी हमें मालूम हुई, थोड़ी लोग चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर चिन्हय मिशन के लिए कुछ भूमि भी लेने की चर्चा चल रही है, भूमि लेंगे भवन बनाएंगे और फिर उसमें विज्ञान भवन चलेगा, स्वाध्याय मंडल चलेंगे, कार्यक्रम नियमित रूप से चलेगा, तो ये जो मिशन के जो कार्यक्रम है वो अपने ढंग के हैं, कार्यक्रम समाज में इनकी भी आवश्यकता होगी उनका है, तो इस प्रकार का जो भी कार्यक्रम होता है उसमें यहाँ के अध्यक्ष हैं मंत्री लोग हैं उन लोगों से सहयोग रखें, तो सम्मिलित रखें ध्यान रखें और सहयोग करें, जिन लोगों के पास इस प्रकार के साधन हों वो उन लोगों को बता दें और उसको किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाया जा सकता था तो उसको बढ़ाने, तो वो जब इस प्रकार का स्थान बनेगा तो वहाँ आगे आने वाली पीढ़ी के जो बालक हैं उनके बालकों के चरित्र निर्माण के लिए उनको नैतिकता की शिक्षा धर्म की शिक्षा उनको लेकर के उनको सन्मार्ग पर लगाना, उनका जीवन शांत में सुखमय जीवन बने इस प्रकार को बनाने के लिए वो ये शिक्षा बन जाएगा और उससे भी समाज को बहुत लाभ होगा, तो इस तरफ ध्यान देंगे ये भी बस इसी के साथ जो फिर भगवत स्मरण के द्वारा कला संपन्न होते चला रहा था कार्यक्रम का समापन करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव।